नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश से एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मुंबई में जनसभा को किया संबोधित। देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाला स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। खगड़िया जिले के पसराह थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर और कार की टक्कर में 7 लोगों की मौत, 4 घायल। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल से राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर बारिश और वज्रपात की संभावना। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और राजनीतिक दलों ने रैलियों का आयोजन शुरू कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पालनाडु में एनडीए की पहली चुनावी रैली की। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए गठबंधन क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय विकास को लेकर आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयास से आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं।
गरीब की सेवा करने वाली सरकार है, गरीब की चिंता करने वाली सरकार है। हमारी सरकार के 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पूरी दुनिया में एनडीए सरकार के विकास कार्यों की चर्चा हो रही है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के बीच है। श्री गांधी दक्षिण मुंबई में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दे रही है, वहीं सत्तारूढ़ दल की विचारधारा है कि देश का शासन केंद्र से चलना चाहिए।
ये हिंदुस्तान के दो एक्सप्रेशंस के बीच में लड़ाई है, कि बीजेपी कांग्रेस के बीच में लड़ाई नहीं। हिंदुस्तान बीच से चलाया जाएगा, ऊपर से चलाया जाएगा। और एक दूसरा तरीका है कि हिंदुस्तान को डिसेंट्रलाइज तरीके से हिंदुस्तान के सब लोगों को सुनकर चलाया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों और निजी संपत्ति पर प्रदर्शित राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनधिकृत पोस्टर, होर्डिंग और बैनर को 72 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार की ओर से चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकेंगे। इधर राज्य में सभी जिला प्रशासन आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में जुट गया है। आचार संहिता के अनुपालन के लिए धारा 144 और 144A लागू कर दी गई है। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए बैनर, होर्डिंग और पोस्टर को हटाने का काम जारी है। लोकसभा चुनाव के दौरान आम मतदाता किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना निर्वाचन आयोग के मोबाइल ऐप सी विजिल के माध्यम से दे सकते हैं। आयोग के अनुसार शिकायतों पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। इधर चुनाव खर्च की निगरानी के लिए जिलों में इन्फोर्समेंट एजेंसियों को 24 घंटे सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। 20 एजेंसियों के माध्यम से पैसों के लेनदेन पर नजर रखी जाएगी। वहीं सभी जिलों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए विभिन्न कोषांगों को सक्रिय कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यभर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 1 मार्च से 16 मार्च के बीच 25 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक मूल्य की शराब जब्त की गई है। इसके अलावा लगभग 14 करोड़ 37 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में 11 करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक का सोना और चांदी भी बरामद किया गया है। देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाला स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। एक रिपोर्ट।
इस आयोजन में विभिन्न स्टार्टअप के अलग अलग पवेलियन होंगे, जिनमें एआई, एग्रीटेक, डीप टेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, फिनटेक जैसे अनेक विशेष पवेलियन शामिल होंगे। इस महाकुंभ का उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र का देश है और नए स्टार्टअप की इस सूची में प्रतिदिन बड़ी संख्या में वृद्धि हो रही है। स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से अधिक स्टार्टअप, हजारों निवेशक, 30,000 भावी उद्यमी और विश्व स्तरीय प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर और कार के बीच हुई टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गयी। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल है। हादसे में 4 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। पुलिस ने बताया कि सभी कार सवार लोग एक बारात से वापस लौट रहे थे। सभी घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल AIRNews Patna पर भी सुने जा सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा CUET UG पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 मई से 31 मई के बीच आयोजित कराएगी। एक रिपोर्ट।
परीक्षा के दौरान आम चुनाव के लिए मतदान की तिथि 20 मई और 25 मई भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च के बाद पंजीकृत छात्रों की संख्या और उनकी भौगोलिक स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA इस जानकारी और मतदान तिथियों के आधार पर CUET UG की परीक्षा की तिथियां 15 मई से 31 मई के बीच तय करेगा। समाचार कक्ष से सक्सेना।
भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी शेफाली बी शरण पत्र सूचना कार्यालय की नई प्रधान महानिदेशक होंगी। 1990 बैच की अधिकारी श्रीमती शरण इससे पहले निर्वाचन आयोग और वित्त मंत्रालय में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। वहीं वरिष्ठ सूचना सेवा अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी समाचार की नई महानिदेशक होंगी। वे 1991 बैच की अधिकारी हैं तथा अप्रैल में वर्तमान महानिदेशक वसुधा गुप्ता का स्थान लेंगी। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम की प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट मुजफ्फरपुर के तत्कालीन उप महाप्रबंधक शिवानंद को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। शिवानंद पर 1,66,00,000 रुपए गबन का आरोप है। इस मामले में उस पर पिछले वर्ष 23 सितंबर को केस दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में रियाज मारूफ के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। वह PFI बिहार का उपाध्यक्ष था। इस मामले में रियाज 17वां आरोपी है, जिसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। उस पर राष्ट्र विरोधी गतिविधि समेत अन्य आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप है। प्रदेश में कल से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक SK पटेल ने बताया कि कल से 21 मार्च तक राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना है। वहीं उत्तर बिहार में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान है।
प्राप्त मौसमी विश्लेषण के अनुसार प्रदेश में अभी शुष्क पश्चिमी हवाएं चल रही है, जिसके प्रभाव से दक्षिण बिहार के एक दो स्थानों पर 19 मार्च से मेघ गर्जन के साथ वर्षा का पूर्वानुमान है, जो 21 मार्च तक जारी रहने का पूर्वानुमान है।
पटना में आयोजित 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। बिहार ने ओडिशा को 48-10 से हराकर अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की की। दादर नागर हवेली में खेली जा रही 52वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार ने आंध्र प्रदेश को 21-6 से पराजित कर दिया है। बिहार का दूसरा मैच आज उत्तराखंड से होगा। अरवल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 पर कलेर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक से 583 कार्टन शराब बरामद करने के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत केमदारचक मानिकपुर बिखरा में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 5000 लीटर से अधिक अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया। पटना के चरैयाटार पुल के पास मद्य निषेध विभाग की ओर से चलाए गए अभियान में एक चारपहिया वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत बलथरी चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से करोड़ों रुपए मूल्य का स्प्रिट बरामद करने के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मिशन 2024 के लिए महारैलियों से सियासी समर का आगाज। अखबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखता है, जनता कह रही 4 जून को हम 400 पार होंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को भी अखबार ने पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, 400 सीटों के पीछे भाजपा का मकसद संविधान बदलना। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, तलवार की धार पर एनडीए के कई सांसद रोहिणी छपरा से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। प्रभात खबर लिखता है, चुनावी बॉन्ड को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया नया डेटा, भाजपा को 6,986 और टीएमसी को 1,397 करोड़ रुपए का मिला चंदा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, भारतवंशी डॉक्टर ने आंत कैंसर का टीका इजाद किया। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, तमाम कोशिशों के बावजूद 33% वोटर नहीं निकलते घरों से। आज अखबार की प्रमुख खबर है, सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर दायर हुई याचिका। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश से एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मुंबई में जनसभा को किया संबोधित। देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाला स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर और कार की टक्कर में 7 लोगों की मौत, 4 घायल। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल से राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में कई स्थानों पर बारिश और वज्रपात की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।